बेहद सेवाओं के निमित्त दिव्य बुद्धिधारी बाबा के अथक सेवाधारी फरिश्ता स्वरूप आदरणीय करुणा भाई जी का दिल के गहराई से तालियों के गुंजन से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई जी का परिचय। 1960 से अध्यात्म की पहचान पाकर जीवन धारा को नई रोशनी मिली और 1960 में ही ईश्वरीय ज्ञान ईश्वरीय संदेश के आधार से प्राप्त हुआ। डिप्लोमा इन डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट मैकेनिकल में आपने पढ़ाई की है। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर के बेहद सेवाओं में बहुत बहुत विशेष योगदान है, सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है। मीडिया की सारी सेवाओं में आपका ही योगदान है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आधार लेकर यज्ञ की सेवाओं का आधार स्तंभ आप बन गए। घर घर में बाप दादा का आवाज और उनके बच्चों द्वारा प्रत्यक्षता की लहर को फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका आपकी रही। कभी हमने सोचा नहीं था कि घर घर में झंडा कैसे लहरेगा और इतना आसान दिखाई देता है अभी यह हो गया है कि भगवान के महावाक्य और ब्राह्मण बच्चों का एक कदम अर्थात पीस ऑफ माइंड चैनल, अनेक टीवी चैनल, रेडियो मधुबन ने ये सब साबित करके दिखाया है। वर्तमान समय भाई जी ब्रह्मा कुमारी के सेक्रेटरी जनरल है। ऐसे भाई जी से हम लाभान्वित होंगे। बाबा से प्रीत की रीत। ओम शांति। भाई जी का स्वागत करते हैं गुलदस्ते के द्वारा।
ओम शांति। आज हम सभी बाबा के आह्वान करते हैं कि बाबा आकर के हम सबसे मिले, दृष्टि दे, वरदान दे। जो हम बाबा के बच्चे उपस्थित है तो वही वो अनुभव करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी सत्संग दुनिया में नहीं है जहां 10,000 15,000 20,000 बच्चे बैठे रहे और एकदम साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं, एक शब्द नहीं। भले छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, हम देखते हैं किस प्रकार साइलेंस होता है। तो आज वैसे भी सभी ने साइलेंस रखा है बाबा के। विशेष दिन है 18 जनवरी, ब्रह्मा बाबा का, अव्यक्त बाबा का पुण्यतिथि का दिवस है। तो इसीलिए हम सभी पांडव भवन भी जाते हैं और बाबा के शांति स्तंभ का अनुभव भी करते हैं और वहाँ भी मैंने अखंड शांति का अनुभव किया। किसी भी प्रकार की आवाज वहां नहीं था। चार धाम की यात्रा भी किए तो वो भी अनुभव हम सब ने किया है। आज मुझे कहा गया परमात्मा से प्रीत का रीत क्या है, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि आप सबके साथ मेरा अनुभव कैसे रहा, तो वो आप सबको मैं सुनाऊंगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ या कहीं किताबों में लिखे हुए, गीता में लिखा हुआ वर्णन नहीं। हम बच्चों को जब भी कुछ भी सुनाते हैं अपना अनुभव से सुनाते हैं, तो वो आप सबको भी वो अनुभव हो सकता है। शिव बाबा के साथ जिनको परिचय हो जाता है, क्योंकि बिना परिचय के तो प्यार के प्रेम की कोई रीति नहीं होता है। बहुतों को देखते हैं परिचय नहीं है तो कुछ नहीं, जो परिचय होता है तो जैसे जैसे आत्माएं हैं वैसी उनके साथ हमारा स्नेह प्यार प्रीति दिखाई देता है। तो इसी प्रकार अनुभव एक और चीज है, ज्ञान एक और चीज है जिसको नॉलेज कहते हैं। परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या करते हैं, इसको हम परिचय कहते हैं। नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य ये ईश्वर के बारे में हमको बताते हैं, सिखाते हैं। जैसे पहले दिन आत्मा का परिचय लेते हैं तो दूसरे दिन हमको परमात्मा का बारे में संपूर्ण परिचय दिया जाता है, ताकि हम परमात्मा को याद कर सके। आत्मा के लिए तो हम समझ जाते हैं हम हर एक आत्मा है, परंतु परमात्मा के लिए दुनिया में अनेक प्रकार की भावनाएं हैं, अनेक धर्म भी है, अनेक मूर्तियां भी है, अनेक मंदिर भी है, और जिसको हम लोग कहते हैं कुछ ऐसे स्थान भी मशहूर है, जैसे साउथ में तिरुपति, मीनाक्षी मंदिर आदाद। आजकल एक और साउथ में कहते हैं अय्यप्पा नाम से, जहां लाखों लोग जाते हैं। तो उसी तरह नॉर्थ में विश्वनाथ भी है, काशी विश्वनाथ कहते हैं, या चार जो मंदिर भी है, शिव का ही है बद्रीनाथ। इस तरह से और संतोषी माता का भी यहाँ मशहूर है, परंतु ये अलग अलग रूप से स्थान का प्रभाव है, मूर्तियों का प्रभाव है, तो यहां हमको एक ईश्वर है ये बात सिखाया जाता है। क्योंकि बहुत होते हैं तो याद किसको करें, परंतु एक ईश्वर होते हुए भी उसको याद हम कैसे करें, जब याद करने की रीति देखा जाती है तो लोगों को भी थोड़ा आश्चर्य तो होता है। ब्रह्मा कुमारियां इतना आगे बढ़ रहे हैं, विश्व संस्था बन गया है, तो इनके पास ऐसी क्या शक्ति है जो शक्ति दूसरों में नहीं है, वो ऐसा कौन सा शक्ति है या रीति है जो ये ईश्वर को याद करते हैं। तो हम सब यही कहते हैं कि हम ईश्वर को मन से याद करते हैं, मन मना भाव। तो मन से याद करने की विधि जो है, जिसको ध्यान भी कहते हैं, राजयोग भी कहते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ विधि है। बाकी तो आरती, फूल चढ़ाना, स्नान कराना, गंध का तिलक लगाना, ड्रेस करना, ये सब विधि जो है वो स्थूल विधि है, परंतु जो निराकार परमपिता परमात्मा को ये सब नहीं कर सकते हैं, केवल केवल हम बुद्धि से ही करते हैं, मन से ही करते हैं। लोग तो कहते हैं ये तो मुश्किल है, पर हमारे बाबा के बच्चे जो है, बाबा को याद करना मुश्किल है कहने वाले हाथ उठाए? देखो एक भी नहीं उठाते हैं। दुनिया में कहा जाता है भाई भगवान को याद करना मुश्किल है, मन चंचल हो जाता है, मन यहां वहां चला जाता है। मंदिर में गए हैं, मंदिर में खड़े हैं, परंतु बुद्धि अपनी कहीं जाता है तो उसको हम याद नहीं कहा जाता है। तो ऐसी क्या बात है जो हम बच्चे कहते हैं कि भाई बाबा की याद हमारी सर्वश्रेष्ठ है, और बाबा के शब्दों में बच्चे ये तो सहज राजयोग है। जो ये कहते हैं बाबा को याद करना सहज राजयोग है, वो हाथ उठाए? देखो, तो अब मैं आप सबके साथ विचार करते हैं कि जब दुनिया कहते हैं मन हमारा भटकता है तो हम मन से याद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम पूजा, घंटी, मंत्र सब करना पड़ता है, विधि। पर हम कुछ नहीं करते हैं, हम चुपचाप बैठे हैं और हम बाबा को याद करते हैं। इतना ही अंतर है कि वो कहते हैं भगवान और हम कहते हैं मेरा बाबा। तो हम सब ये कहते हैं परमात्मा को, शिव बाबा को एक ही हम लोग कहते हैं। ये भी मैं अपना अनुभव से कह रहा हूं। मैं जब ब्रह्मा बाबा से मिलने 1960 में आया था तो जैसे मिलाते हैं तो जैसे मुझे बाबा के सामने लेके गए बाबा का कमरे में मिलाने के लिए, जैसे ही मैंने बाबा को देखा और बाबा ने मुझे दृष्टि दिया, वो तो हम कहते हैं दृष्टि, परंतु मिलना तो दृष्टि से ही होता है, आंख मूंछ के तो बाबा से मिलने गए तो देखेंगे तो सही, परंतु वो देखने में जो पहला अनुभव हुआ, जो बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा, शिव बाबा जो ब्रह्मा बाबा द्वारा जो दृष्टि देखा, दृष्टि दिया, वो एक और अनुभव है जो आज आप जितने भी भाई बहने बैठे हैं अभी, तो आप ये अनुभव करेंगे कि बाबा मुझे ही देख रहा है, मुझे ही दृष्टि दे रहा है। ये अनुभव आज आप करेंगे। बाबा सामने वालों को ही नहीं करता है, बाबा की दृष्टि हर बार आप देखेंगे एक कोने से, लास्ट में भी जो बैठे हैं, फर्स्ट में भी जो बैठे हैं, बाबा उनको देखते हुए पूरी सभा को बाबा दृष्टि देता है। वो भी नहीं जैसे जल्दी जल्दी करता है, नहीं, जो आजकल जो भाषण करते हैं ना, तो वो तो ऐसे ऐसे घड़ी घड़ी देखते हैं। बाबा का ऐसा नहीं। बाबा जो दृष्टि देता है तो हर आत्मा को बाबा दृष्टि देता है। हर एक महसूस करेंगे कि उस समय की जो शांति है, उस समय का जो अनुभव है, वो अनुभव बहुत ही विशेष है। सिर्फ इतना ही है कि दूसरे जो ईश्वर को याद करते हैं और हम बाबा को याद करते हैं, एक बहुत बड़ा अंतर है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, तो मेरे साथ भी ये अनुभव हुआ। मैं आया था बेंगलुरु से, हजारों किलोमीटर दूर बाबा से मिलने आया था पहली बार, ब्रह्मा बाबा के दर्शन करने लिए नहीं आया था। मुझे बताया गया कि स्वयं भगवान शिव इस सृष्टि पर उतर के आए हैं, ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को मुरली सुनाते हैं। जो मुरली मैंने बेंगलुरु में सुना तो मैंने कहा स्वयं भगवान सुना रहा है, और मुरली भी बहुत अच्छा लगा मुझे, पर 15 दिन पहले सुनाया हुआ मुरली वहां पहुंचता था, उन दिनों में पोस्ट द्वारा, तो मैंने सोचा कि ये तो नहीं, जब स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आवे और हम बच्चों के लिए ही मुरली सुना रहा है, दुनिया के लिए नहीं। बाबा स्पष्ट बोलते थे जो साकार मुरली है वो बाबा के बच्चों के लिए है, वो हम आज जैसे सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ये वगैरह, तो उसमें सुना दे, बाबा ने कभी नहीं कहा था, बाबा ने मना किया था। बाबा बच्चों को ये सुनाया था। क्यों सुनाया बच्चों को? क्योंकि बच्चे और भगत में एक अंतर है। हम सब बच्चे हैं या भगत है? जो कहे बच्चे हैं वो हाथ उठाए, देखो ना, एक भी भगत नहीं है। तो बच्चे और भगत में अंतर यही है, तो हाथ जोड़ता है। बाबा कहते हैं नहीं, बच्चे हाथ नहीं जोड़ते हैं, बच्चे दृष्टि में दृष्टि मिला के बात करते हैं। समझो पहली बार भी कोई आते हैं बाबा से मिलने, तो बाबा तो महान है, तो कभी कभी समझो हम नीचे देख लेते हैं, तो हमारे साथ जो टीचर है वो कहते थे नहीं, बाबा से दृष्टि लियो, बाबा से दृष्टि लियो। तो दृष्टि में जो जादू है, जो हमारी ये ब्राह्मणों की वे पहली नीति है, वैसे भी दुनिया में रिसर्चर्स कहते हैं, जिन्होंने इन बातों में डॉक्टरेट किए हैं, फिलॉसफी सिखाते हैं, वो कहते हैं आपको किसी से दिल से मिलके बात करना हो तो आंख को देख के बात करो, कहते हैं। तो हम भाषण करते हैं, उस समय जरूरी नहीं है कि भाई हम आंख को देख के करते हैं। परंतु मुझे याद है शिवानी दीदी कहती थी कि मैं बहुत बड़ी सभा में कोई टेंट लगाए या ओपन ग्राउंड पे करने का इतना मजा नहीं आता है जितना हॉल के अंदर सब बैठे हैं तो उनसे बात करने में मजा आता है, भाषण करने में नहीं। बात करना माना हमको दिखता है, जिसको हम कहते हैं रियल कम्युनिकेशन, मतलब सचमुच हम एक से एक से बात करते हैं। तो बाबा की मुरली भी सदाई हमको ऐसा महसूस होता था जैसे बाबा हमको देख के चला रहा है। तो जो भी यहां बैठे हैं तो आप सभी भी यही कहते हैं कि मुरली आज की मुरली भी आप सबने सुनी है, ये कहते हैं कि भाई ये तो बाबा ने सबके लिए बताया है, या कहते हैं कि आज बाबा ने जो मुरली चलाई है वो मेरे लिए बाबा ने चलाया है, ऐसा हाथ उठाए, देखो क्या एक एक उठा रहे हैं। तो हम बच्चों को बाबा ने जो सुनाया है, तो बाबा सुनाने टाइम पर हम सबको देखते हैं, बाबा को आत्मा ही दिखता है, शरीर नहीं दिखता है, आत्माओं को ही बाबा सुनाते हैं। तो इसीलिए मेरा भी अनुभव है मेरा चार दिन पहली बार मधुबन में जब आया था तो मैं ब्रह्मा बाबा का मुरली सुन रहा था, परंतु दृष्टि यहां देख पाता बाबा का कि शिव बाबा कब आता है और कब जाता है, मुझे देखना है। तो देखने के चक्कर में मेरा चार दिन ऐसे ही गया तो मैंने कहा बाबा दिखाई नहीं दिया। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं परंतु मुझे दिखाई नहीं देता है। चार दिन मैं देखने की बड़ी कोशिश करता रहा। फिर पांचवा दिन मैंने कहा अभी तो दो ही दिन रहा, मधुबन में तीन दिन रहा, चार और तीन सात दिन रहने का छुट्टी होता था उन दिनों में। मैंने कहा अभी तीन दिन है, मैं बेंगलोर में रहा, वहां योग अच्छा लगता था, बाबा के पास मैं पहुंच जाता था, बाबा से बातें करता था, इतना अच्छा लगता था, और यहां बाबा दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं जैसे वहां करता था बेंगलोर में, मैं आज ऐसे बाबा से बात करूंगा और ऐसे बाबा को देखूंगा। तो वहां का और यहां का अंतर क्या था? यहां मैं देखने का करता था और वहां अपने आप को मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप हूं, ऐसे सबको आत्मा के रूप में देखता था। तो शिव बाबा परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप जो परमधाम निवासी, तो अपने आप को अशरीरी आत्मा बनकर परमात्मा को परमधाम में मिलने का जैसे ही संकल्प किया तो बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर गया। मैं अपने आप को मधुबन में बैठा हूं ये वगैरह सब भूल गया। मैं अपने आप को आत्मा समझकर, ज्योति स्वरूप समझकर शिव बाबा को याद करने का, जैसे ही मैंने किया, जो बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर आई और जो अनुभव उस समय पर हुआ है वो मैं आज तक भी याद रखता हूं कि भाई मुझे याद शिव बाबा को परमधाम में ही करना है। पर अब बात आती है तो शिव बाबा दादी जी के तन में यहां आवे, क्या हम परमधाम जाके याद करें? ये भी तो प्रश्न है ना। तो आज शाम को बाबा आपके सामने हो और आपको दृष्टि दे रहा हो तो आप क्या अंक मुंह कर रहे हैं तो हम परमधाम में जाके बाबा को याद करें? तो फिर मधुबन क्यों आए? क्योंकि आपको पता है बाबा मधुबन में आते हैं। स्वयं भगवान इस धरती पर आए थे, जो ये स्थान को बाबा ने कितनी बार यहां आकर के हम बच्चों को मुरली सुनाए हैं, एक एक घंटा दो घंटा बाबा बच्चों से मिलते रहे यहां स्वयं भगवान। तो इस स्थान का भी वो महत्व है। तो आप जहां भी बाबा का कमरा है कह करके जो बच्चे वहां बाबा को याद करते हैं तो वहां का अनुभव और अलग स्थान का अनुभव अलग है। क्यों? हम रोज बाबा से वहां मिलते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है बाबा का कमरा। तो जब तक बाबा का कमरे में नहीं जाते हैं मन में ये नहीं लगता बाबा से मिले। तो इसीलिए ये स्थान पे आप सबको इस बार बाबा से मिलने का अनुभव, हाँ हम सभी बाबा से मिले तो उसके लिए जो रीति क्या है कि हम यहां है नहीं, हम बाबा के साथ है। जैसे हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड करते हैं, तो वो तब होता है जब दो हाथ मिलता है। तो ऐसे ही बाबा से मिलन करने की जो विधि है, तो स्वयं को भी ज्योति बिंदु स्वरूप समझकर मेरा बाबा, हम किससे मिलते हैं? ऐसे ही सबसे मिल लेते हैं? नहीं, जिसको हम जानते हैं तो उनसे हम मिलते हैं, सबसे हाथ नहीं मिलाते हैं। तो ऐसे बाबा के साथ भी जो मिलते हैं, तो पहली पहली भाषणा हमको आता है तो मैं किससे मिल रहा हूं, मेरे बाबा से मिल रहा हूं। आप किससे मिल रहे हैं? मेरे बाबा से, दूसरे का नहीं। हरेक अपने दिल में यही अनुभव करते हैं कि मैं मेरे बाबा से मिल रहा हूं। चलो, एक होता है हाथ मिलाने का, अच्छा बाबा, पर एक कोई बहुत नजदीक बहुत अच्छा मिलने का जो विधि है, तो गले लगते हैं जो आपका समीप है, आपको अति स्नेह है, उसको तो जैसे ही मिलते हैं तो गले मिल लेते हैं, सबसे नहीं मिलते। तो क्या आज आप भी सबसे अच्छा सबसे श्रेष्ठ है? तो बाबा हम बच्चों के लिए ही है, दुनिया के लिए तो भगत के लिए है, पर हम बच्चों के लिए बाबा है, बच्चों का बाबा है। तो क्या बच्चों को बाबा से गले मिलने की भी अनुभव हो सकता है? क्योंकि गले मिलने का एक अलग तरीका है। जब एक दो को गले मिलते हैं तो दृष्टि तो नहीं होता है, वो पीछे देखता है, दूसरा पीछे देखता है, तो फिर गले क्यों मिलते हैं भाई? आंखों के सामने दृष्टि से मिलो ना, सेकंड हैंड करते हुए, पर गले क्यों मिलते हैं? गले में इस दृष्टि से भी एक अलग चीज है। जब गले मिलते हैं, दिल दिल से मिलता है। तो आज हम सभी बाबा से दृष्टि तो लेंगे, वो तो बाबा मिल रहा है, दृष्टि दे रहा है आपको, परंतु जो बच्चे बाबा को अति प्यार करते हैं तो वो गले भी मिलते हैं। पर मुझे थोड़ी सी होता है कि भाई मैं बताऊं या नहीं बताऊं, मैं पहली बार जब बाबा से मिला, दृष्टि तो बाबा ने दिया, मेरा बाबा, मैं बाबा से मिलने जा रहा हूं, मैं बाबा से मिला, परंतु बाबा के जो हाथ है ऐसा था। बाबा ने कहा, आओ बच्चे, तो उस समय पर महसूस हुआ मैं और मेरे बाबा का मिलन का अनुभव क्या होता है, जो हाईएस्ट जो प्यार है वही वो गले मिलते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, बच्चा और माँ हो, वो जो हाईएस्ट प्यार जो है, जो बाप और बच्चों की जो अनुभव हमने साकार में किया था, पहली बार में ही मैं जब बाहर आया पहली बार बाबा से मिलके, तो हमारे टीचर्स जो ले आए थे उन्होंने पूछा, तो आप बाबा से मिले? हाँ, मेरा बाबा। उस समय पर जो अनुभूति जो होती है वो एक अलग ही अनुभूति थी। तो शरीर के, दुनिया के कोई स्मृति नहीं था, मैं कहाँ का हूँ, कौन सा देश का, कौन सी भाषा, कौन सी जात, कौन सी, सब कुछ भूल गए, कुछ नहीं। बाबा का केवल ऐसा, आओ बच्चे, और सचमुच सब कुछ भूल करके एक बाबा से मिले थे। मुझे मालूम है आप लोग मधुबन में आए हैं, आपको भी बाबा ये अनुभव कराएगा। कैसे? आप इतना दिन जो यहां आए हैं, तो ये बाबा का, स्वयं बाबा पधारने का, बाबा की प्रैक्टिकल अनुभव करने का ये स्थान है। सिर्फ बाबा का कमरा नहीं, ये पूरा हॉल जो है डायमंड हॉल, घंटों तक बाबा हम सब बच्चों के सामने रहते थे, और प्रैक्टिकली एक एक सीन जो था वो जैसे हमारे दिल को लगता था कि भाई देखो बाबा बोल रहे हैं, बाबा देख रहे हैं, बाबा हंस रहे हैं, बाबा बच्चों को फ्रूट फेंक रहे हैं, बाबा को भोग खिला रहे हैं, प्रैक्टिकली जैसे फिजिकल। आप सबको ये अनुभव यहां हो सकता है और वो कहीं भी नहीं हो सकता है, वो आप आज यहां देखेंगे तो कैसे बाबा देखता है, प्यार करता है, खिलाता है, खाता है, और एक एक शब्द जो है जैसे वरदान की शब्द होता है, वो शब्द आपको जो मुरली में आता है तो वो एक और चीज है। तो जैसे यहां हम कहते हैं कि भाई आज दीदी ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, पर स्वयं ईश्वर जो मुरली सुनाया वो कैसा है, वो भी एक अनुभव आपको यहां होगा। मुझे याद है टेक्नोलॉजी जो पहली बार टेप रिकॉर्डर निकला दुनिया में, उन दिनों में पहले विदेश में होता था, तो मुझे भी बाबा ने एक जगह भेजा था गोवा में, कि कोई वहां से ले आ रहा है विदेश से, आप जाकर के वो लेके आओ, बाबा ने कहा। उसके लिए बाबा इतना महिमा करते थे उसको, बच्चे ये टेप भेजो, बाबा की आवाज सुने, क्योंकि उन दिनों में कुछ नहीं था कि भाई हम यहां बाबा हमको मुरली सुनाए, हम किसी को, किसी सेंटर को, किसी बाबा के बच्चों को सुना सके, कोई विधि नहीं था। ये फोन वोन भी वो सब बाद में आया, जो पहले पहले जो टेप रिकॉर्डर आता था तो बाबा कहते था ये सेंटर को ये भेजो, बहुत थोड़े सेंटर थे, तो हम लोग जब भेजते थे तो लोग ऐसे सुनते थे। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ था जिस दिन साकार बाबा ने शरीर छोड़ा, जो पुण्य तिथि जिसको कहते हैं 18 जनवरी का हम करते हैं, तो वो दिन हम सबको तो शौक तो होना ही है, हर एक बच्चों को, माँ बाप का जो पुण्य स्मृति का दिन जो होता है तो थोड़ा सा तो याद तो होता ही है ना। तो हम लोग बाबा को अपना अति प्रिय मानते थे, इतना स्नेह इस दुनिया में आत्माओं के साथ तो हो ही नहीं सकता है, आत्माओं के साथ सीमा होती है, परंतु शिव बाबा के साथ का जो प्यार है उसका कोई सीमा नहीं है। इसीलिए जो लोग समझते हैं जितना दूर हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो उतना श्रेष्ठ समझते हैं, तो उतना दिन वो यात्रा में एक खुशी होती है वो अलग होता है। तो ऐसे हम भी बाबा को याद करते थे तो वो जैसे एक हाईएस्ट हमको लगता था। तो ऐसा बाबा जिसके लिए हमने तन मन धन दे दिए, जीवन दे दिए, जो हमारे कराची से आए थे 380 बहनें, 14 साल तपस्या किया है और ऐसे भगवान को यहां लाए थे और हम सबके सामने ब्रह्मा बाबा हो, दादियां हो, इसके बाद अव्यक्त बाबा हो, तो जैसे हम भगवान के साथ थे, भगवान ने कितना हमको एक प्यार दिया उसमें। तो ऐसे बाप हमारे सामने जिसने साकार बाबा का प्यार जो देखी है, नूरे रतन मीठे मीठे बच्चे, ऐसे शब्द हम बच्चों को, जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय हमारे, हम बच्चे दुनिया में तो करोड़ों बच्चे हैं, पर थोड़े से बाबा देखो चुन के कहे आए, तो हम सब चुने हुए बच्चे हैं, ऐसे थोड़े बच्चे हैं। और बाबा इतना प्यार हम बच्चों को देते थे, तो समझो बाबा हमारे सामने जिस शरीर को लेकर के हमको जो ज्ञान दिया साकार बाबा, जिसका पुण्य स्मृति आज हम मना रहे हैं, तो हम सबका क्या हाल हुआ होगा, अब हम क्या सुनेंगे, क्या होगा, क्या परमात्मा चला गया तो क्या अगले कल्प आएगा। जो शौक हमको हुआ था वो मैं वर्णन नहीं कर सकता, करना है तो एक ही शब्द है, वो बोलना अच्छा नहीं लगता है, चाहे भाई है चाहे बहने हैं, जब बाबा ने शरीर छोड़ा ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे हम सजनियां सब जैसे विधवा हो गए, ऐसा अनुभूति हम सबको हुआ था। मैंने तो पहले सुनाया आपको, टेप रिकॉर्डर आया था, सारे भाई बहने खुश होते बाबा का सुन के देख के। और उसके बाद हम लोगों के साथ ऐसे हुआ, सिर्फ टेप रिकॉर्डर रहा, बाबा तो चला गया, परंतु वो भी सीन आपको मैं बताऊं तो बाबा ने संदेशी द्वारा जो पहली मुरली चलाया था तो वो टेप रिकॉर्डर में भरा था। मैं वो टेप की बात कह रहा था आपको, वो जो पहली मुरली आज भी हम सबके पास वो है। और जैसे ही वो मुरली हमने टेप में सुना, जो बाबा ने कहा, बच्चे मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यहां ही हूं, मैं अंत तक आप सब बच्चों के साथ हूं, और जो भी बच्चे ऊपर आएंगे अशरीरी बन के ऊपर आएंगे अंत में, परम धाम जाने से पहले बाबा से मिलके ही जाएंगे। तो किसी से भी हम पूछे ना कि ब्रह्मा बाबा चला गया, जन्म ले लिया, कोई भी इस बात को नहीं मानते हैं, नहीं नहीं बाबा वहां ही है। हर संदेशी से पूछिए बाबा गया, कहते हैं नहीं, ब्रह्मा बाबा ऊपर ही है, उसके तन द्वारा ही अभी भी बाबा संदेश जो देता रहा। तो संदेशी जाकर के बाबा से मिलते हैं, बाबा से संदेश ले आते हैं। तो बाबा हमारे लिए अभी भी है, और बाबा की ये वायदा है कि मैं इस सृष्टि पे आया हूं आप सब बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। तो बाबा ने हमको बताया था, मैं हम सब साथ जाएंगे, साथ लेके जाएंगे और शरीर छोड़ दिया। तो हमने कहा भाई अभी हमको कहां साथ ले जाएगा, तो क्या हो गया होगा हमको। पर वो टेप रिकॉर्डर में जब आवाज से बाबा बोलते हुए जब सुना, तो 4 दिन लगा था मुझे आने के लिए। और वो 4 दिन की जो अवस्था मैं बताऊं, होश नहीं था, इस दुनिया में था ही नहीं मैं, ऐसा लग रहा था। पर यहां आने के बाद सब दीदियों ने दादियों ने स्वागत किया, तो उनको भी मालूम था कि भाई बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। तो उनको क्या लगा होगा दिल में, जो बच्चे बाबा से साकार बाबा से पालना लिए हुए हैं, स्वयं भगवान भगवान के पालना लिए हुए आत्माओं की क्या स्थिति होगी। तो वो जानते थे क्योंकि खुद भी अनुभव कर रहे थे, आंसू सब नहीं बहा रहे थे, कोई भी नहीं बहा रहे थे। और हम बच्चे आने टाइम पर जैसे क्या कहे क्या करे, किस तरह से दादियों को मिले, तो बाबा नहीं तो दादियां ही है। तो उन लोगों को मालूम था कि भाई इनको क्या होता है, इनको कोई समझाने की कोशिश करे या कुछ बोले तो अच्छा नहीं लगता था कि भाई क्या बोलेंगे, शरीर छोड़ दिया अभी क्या बोलेंगे ये लोग, ऐसा। तो हमको यही कहते थे जाओ स्नान करो, स्नान करके आओ, बाबा का मुरली सुनो। माना वो आवाज जो बाबा की थी वो भी जादू था। जैसे ही हमने सुना, एकदम आत्मा को इतनी संतुष्टि हुई कि बाबा हमको छोड़ के नहीं गया है, बाबा हमारे साथ ही है। जो आप सभी हमारे बहने भाई बेटे हैं, तो क्या आपको ऐसी महसूस तो होती है कि बाबा हमारे साथ है? वो हाथ उठावे। थैंक यू। सर्वव्यापी तो नहीं ना? बाबा मेरे साथ है वो अनुभूति, मेरा बाबा मेरे साथ है, हमारा वो बाबा है। हमारा वो बाबा नहीं है जो मंदिरों में बैठा हुआ है या गेरुकफरी के गुरुजी है, महामंडलेश्वर है, है सब है, परंतु मेरा बाबा तो मेरा बाबा है, जिस बाबा को हम सब बच्चों ने अनुभव किया है, निराकार जो ज्योति बिंदु स्वरूप सदाशिव। तो इसीलिए आप सभी भी बाबा के घर में आए हैं। यहां कोई भी ये नहीं कहेंगे ये हमारा घर है, हम मधुबन निवासी है, मान निवासी क्या हुआ, पर घर जो है बाबा के बच्चों का घर है। आपको वही महसूसता होगी यहां, तो आज बाबा का ऐसे सुनेंगे जैसे हम लोग सुने थे, सुन रहे थे, तो आपके साथ हम भी फिर से सुनते हैं, तो हम मुझे वो भी दिन याद आएगा और आपको भी वही अनुभव होगा जो स्वयं बाबा आप सबके साथ है और आपको वो अनुभूति बाबा कराएगा। बाबा के लिए दो शब्द कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। पहले पहले परमात्मा हमारी मां है। हमारा जन्म जो हुआ है वो परमात्मा से ही हुआ है, मेरा बाबा। वैसे तो कहते हैं पिता, परंतु यहां जो कहते हैं मां, त्वमेव माताश्च पिता। हमको जन्म दिया परमात्मा ने पहले, फिर पालना दिया, बाप का पालना दिया। तो यहां आज बाबा के घर में आए हैं, पिता का घर में आए हैं, तो सबको ऐसा लग रहा है जैसे दूसरा कोई घर है, वहां जाके हम बनाते हैं, करते हैं, ये यहां कुछ भी नहीं। देखो बाबा के घर में कितना अच्छा है, सब कुछ मिलता है। बाबा हरेक को अनुभव कराया कि बाबा कैसे हमको हर प्रकार से, दादी पूछती थी सदाई कि सब ठीक है ना, सबको सब कुछ मिल रहा है ना, कहीं थोड़ा सा कभी किसी को स्नान करने गरम पानी नहीं मिला, ये कुछ भी होता था तो दादी कहती थी नहीं, सबको सब प्रकार के सुख मिलना चाहिए, कहीं भी कुछ भी कमी होती थी कहते थे नहीं, ये बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो ये प्यार हमारे दादियों को,
विनाश खड़ा आगे।
आप सभी जानते हैं अभी बाबा को भोग भी लगाएंगे। हमारे शशि दीदी अभी आने वाले हैं तो आप सभी बाबा को भी भोजन खिलाने का जो घर में बनाते हैं वो तो भोग लगाते ही है, परंतु आज हम सभी बच्चे बाबा को भोग लगाने की विधि में साथ है। मधुबन हम सबका घर है तो भोग लगाने की विधि भी हम सबको है। मुझे याद है सभी कुमारों के लिए पहला परीक्षा जो था वो हम लोग खुद अपने हाथ से खाना पकाकर हम खाते थे, क्योंकि नौकरी के कारण हमको जाना पड़ता था या किसी भी बिजनेस के कारण हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था। मधुबन में यहां आने के बाद भी यहां से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां जाने के लिए भी हमको सुबह बैठते थे शाम को पहुंचाते थे, तो दूसरे दिन वहां का काम करके हम तीसरे दिन आते थे। वहां कोई सेंटर तो था नहीं, तो विश्व किशोर दादाजी ये कार्य करते थे यहां। तो मैं आने के बाद विश्व किशोर जी ने शरीर छोड़ने के बाद मुझे एक सौगात दिया गया। तो आप कहेंगे कौन सा सौगात दिया विश्व किशोर जी का, तो वो एक बैग रखते थे जिसमें एक स्टोव और बर्तन और कुछ अनाज उसमें होता था, तो जो मैं अपने साथ लेके सिरोही जाके राजमाता धर्मशाला में रह करके खाना बना के खाता था। तो ये सिस्टम था जब मैं 1960 में आया था। पर धीरे धीरे किस तरह से भोग लगाना तो ये सब सिस्टम हम लोग करते थे, तो इसीलिए आज हम सभी भाई बहनों के लिए ये एक ऐसा मौका है जो आज बाबा को भोग लगाने के भी, क्योंकि हम कहते तो आते थे कि अरे खिलाने वाला तो वही है, देने वाला तो वो एक ही है, पर जो गीता जिन्होंने भी पढ़ा है उसमें हम ये पढ़े हैं कि याद खाने के पहले जो खाना देने वाला जो दाता है तो उसको पहले दे करके फिर खाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं भोग लगाना। खाना खाने से पहले, इसलिए लोग ऐसे भी मैंने देखा था खाने के पहले थोड़ा सा निकाल के बाहर रखते थे, इसके बाद फिर वो खाना खाते थे। हम बच्चों को भी बाबा को भोग लगा करके खाने की विधि वो भी हम यहां सीखते हैं कि सभी मिल करके बाबा को खिलाते थे। हमने देखा था कई बार भाई बहन समझते थे कि भाई शायद दादी दीदियां ही खिलाते हैं, दूसरे कोई नहीं, ऐसा नहीं है। हम बच्चे जो भी थे स्टेज पे तो हम लोगों ने भी खिलाए हैं। तो ऐसे हम सभी भाई बहनों को भोजन करने से पहले, पकाने के टाइम पर तो याद करना ही है, तो दुनिया का खाना और हमारा खाना में यही अंतर है कि खाना पकाने के टाइम पर भी हम बाबा को याद करके पकाते हैं। घर में हलवा बना के खाएंगे, परंतु मंदिर में वही हलवा खिलाते हैं तो कहते हैं प्रसाद है, ऐसे कैसे भाई? मूर्ति तो अंदर है, बनाते तो ब्राह्मण है, तो वो प्रसाद बन जाता है। तो हम घर में बनाए तो उसको प्रसाद नहीं कहते हैं, ये तो हलवा है। तो इसीलिए ये भी एक विधि है, ईश्वर के साथ, भगवान के साथ खा रहे हैं आप, बाबा हमारे साथ खा रहा है। तो खाने के समय पर, मैं तो विदेश में पहली बार गया था 1983 में, तो एक जगह में देखा तो एक भाई एक ग्लास रख के दृष्टि दे रहा था, तो मैंने कहा ऐसा कैसा खाना है ये जो दृष्टि देके ये बैठा हुआ है? तो पानी था उसमें, माना वो कुछ भी खाए कुछ भी पिए पहले भगवान को बाद में। तो मैंने कहा हमारे देश में तो हम शायद पानी के टाइम पर करना है, तो आजकल सूरज भाई वगैरह बोलते हैं कि भाई इसको चार्ज करके पियो, अच्छी बात है। पर मैंने विदेश में देखा कि वो पहले योग कर रहा है इसके बाद पानी पी रहा था। तो मैंने कहा पानी पीना भी है तो बाबा को याद करके पीना चाहिए, तो वो भी मैंने वहां प्रैक्टिकली देखा। तो इसीलिए हम बच्चों के लिए ये एक जैसे एक नियम होना है कि जो अंदर जाए तो वो आत्मा को भी होता है शरीर को भी होता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में एक सेकंड के लिए बाबा को याद करके जो करते हैं, चाहे खाए चाहे पिए, तो वो जरूरी है। तो इसीलिए दादी का जो मंत्र है मुझे सदा ही याद आता है। आप कहेंगे मंत्र क्या होता है, हमारे ज्ञान में तो कोई मंत्र तो है नहीं, पर मुझे तो वो मंत्र ही लगता है जो दादी जब कहती है ऐसा लगता है वो मंत्र है। तो मैं बता दूं मंत्र, जो कहते हैं बताओ वो हाथ उठाए, देखो मंत्र तो सबको चाहिए। तो दादी जो मंत्र कहती है, मेरा बाबा, पर मंत्र दूसरा भी बताती है, मीठा बाबा। तीसरा भी मंत्र कहती है, प्यारा बाबा। और जो भी कुछ आज हम हैं, हम सब भाई बहने हैं, मुस्कुराते हैं, सब सब मैं देख रहा हूं, खुश है, मुस्कुराते हैं। दुनिया के लोगों को तो देखो कैसा है। तो इतना खुश हम बच्चे हैं, तो आखिर शुक्रिया भी तो देना पड़ता है। तो इसीलिए शुक्रिया बाबा भी कहना पड़ता है। तो मेरा ये दिल से निकलता है, तो वो भी मैं भूल नहीं सकता है बाबा की। ये है बाबा को क्या चाहिए, तो बाबा को कुछ हम देना हो तो क्या देवे, एक रुपया भंडारे में डाल दे या 100 रुपया। बाबा को चाहिए सच्चे दिल पे साहेब राजी, ठीक है। तो इसीलिए मंत्र यही है, जो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो जब तक शुक्रिया बाबा नहीं कहते हैं, ये मंत्र पूरा नहीं होता है। तो ये चार बात आप कह देते हैं, तो आपका मन भी शीतल हो जाता है और खुशी भी हो जाता है। देखो हमारे भाई सब आए हैं मधुबन वाले, अब आपको गीत सुनाएंगे, तो इसके बाद भोग लगेगा। ओम शांति।
ओम शांति। साकार रूप से, आकार रूप से या ना निराकार रूप से रहे हैं, लेकिन बाबा हमेशा चमत्कार किए हैं। यही फीलिंग आई है कि बाबा हमारे सदा साथ हैं, सदा साथ हैं, सदा रहे हैं और सदा ही साथ रहेंगे। एक बार हम सब प्यारे बाबा को धन्यवाद देते हैं।
साथ में हो। अपने हाथों को पीछे छुपाए, सब करके निर्माण रहना सिखाए।
कभी अपनी बाहों को आगे बढ़ाकर सत्कार सम्मान करना सिखाए।
कभी अपने हाथों को पीछे छुपाए, सब करके निर्माण रहना सिखाए। कभी अपने बाहों को आगे बढ़ाकर सत्कार सम्मान करना सिखाए।
मनोरम चरित्रों से, अनुपम चित्रों से ना मिटने वाले इतिहास में हो,
है चांद तुमसे रोशन ये दुनिया, धरती पे हो या कि आकाश में हो।
साकार में हो या आकार में हो, मेरे बाब तुम तो सदा साथ में हो। है तो बाबा हमारा, कहे कैसे हम तो कितना प्यारा।
सदा संग रहे थे, रहे हैं, रहेंगे, यकी है हमें दिल ये कहता हमारा।
तुम्हारे ही हम हैं तो बाबा हमारा, कहे कैसे हम तो कितना है प्यारा।
सदा संग रहे थे, रहे हैं, रहेंगे, यकी है हमें दिल ये कहता हमारा।
इसी प्यार और पालना का है जादू,
जन जन की आशा व विश्वास में हो।
ए चांद तुमसे रोशन ये दुनिया, धरती पे हो या कि आकाश में हो।
साकार में हो या आकार में हो, मेरे बाब तुम तो सदा साथ में हो। कहानी अव्यक्त का भी नहीं कोई सानी,
अव्यक्त से भी अव्यक्त होकर निराकार अपनी देते निशानी।
साकार की तो निराली कहानी, अव्यक्त का भी नहीं कोई सानी। अव्यक्त से भी अव्यक्त होकर निराकारी अपनी देते निशानी।
सदा सामने तुम रहो यूं ही बाबा, कभी पास ही थे कभी पास में हो।
है चांद तुमसे रोशन ये दुनिया, धरती पे हो या कि आकाश में हो।
साकार में हो या आकार में हो, मेरे बाब तुम तो सदा साथ में हो। ऐ चांद तुमसे रोशन ये दुनिया, धरती पे हो या कि आकाश में हो। साकार में हो या आकार में हो, मेरे बाब तुम तो सदा साथ में हो। मेरे बाब तुम तो सदा साथ में हो, सदा साथ।